نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألها علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ہم لوگوں نے ایک رمضان گزارا، اور آپ لوگوں نے جیسے کہ اس پروگرام کو بہت پسند کیا، تو اب اسی پروگرام کی ہم کنٹینیویشن کریں گے. ایوری منتھ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ایک سیشن ہوا کرے گا. باتیں تو وہی ہیں جو پہلے تھیں، رمضان میں آپ کو سکھائی گئی تھی، مگر اس وقت آپ کے پاس عمل کے لیے بہت کم وقت ہوتا تھا. مگر اب انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا کہ آپ کے پاس پورا ایک مہینہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں، اپنی اصلاح کریں، اور انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر طور پہ کر سکیں گے ان چیزوں کو. دیکھیں، اگر ہم زندگی میں رمضان کا ہی انتظار کرتے رہیں گے کہ رمضان آئے گا تو ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے، اور اس کے بعد ہم ویسے ہی ہو جائیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہم نے اس رمضان سے کچھ نہیں سیکھا. کیونکہ رمضان کیا تھا، جیسے آپ کو شروع میں بتایا تھا، یہ رمضان تو ایک ٹریننگ کا ٹائم ہے، آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اب اس ٹریننگ میں آپ نے جو سیکھا ہے اس کو پریکٹیکل لائف میں آپ اپلائی کریں گے. جیسے کسی کو بھی کہیں پہ بھی ٹرین کیا جاتا ہے، فوج کو ٹرین کیا جاتا ہے، یا آپ کو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو فیلڈ میں بھیجا جاتا ہے. اسی طرح رمضان نے ہمیں ٹرین کیا، اس میں ہم راتوں کو جاگے بھی، اس میں ہم نے اپنی نمازیں الحمدللہ بہتر بھی بنائیں، ہم نے قرآن پاک سے تعلق بھی قائم کیا، پھر ہم نے کئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کو چھوڑا بھی. تو وہ تو ایک ٹریننگ سیشن تھا. اب آئیے پریکٹیکل لائف، اب اس میں اس کو اپلائی کرنے کا وقت ہے. تو اب ہونا کیا چاہیے کہ ان چیزوں کو بجائے اس کے کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں جو ہم نے رمضان میں سیکھا، کہ اب تو رمضان ختم ہو گیا تو اب کیا ضرورت ہے کچھ بھی کرنے کی. نہیں، انہی کو ہم نے جاری رکھنا ہے اپنی زندگی میں، تاکہ اگلے رمضان آنے سے پہلے یہ چیزیں پکی ہو چکی ہوں، پھر اس رمضان میں ہم اور نئی چیزیں سیکھیں گے. اس طرح ہر سال ہم اپنی زندگی کو بہتر بناتے جائیں گے انشاءاللہ، تاکہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آئے تو ہمارے پاس کچھ تو ہو انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس عزم کو لے کے چلنا ہے، مگر اس میں ایک ذرا تھوڑی سی پرابلم ہے، وہ یہ کہ رمضان میں عمل کرنا الحمدللہ بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹریننگ سیشن جو ہے، تو ٹریننگ میں ایک تو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے سر پہ ایک ڈنڈا بھی ہوتا ہے تھوڑا سا، کہ آپ واقعی صحیح سیکھ رہے ہیں اور اس کو واقعی اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کی کلاس بھی ہوتی تھی، ہر روز پوچھا بھی جاتا تھا، تو اب اس کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر روز آپ سے کوئی پوچھنے کے لیے آئے، آپ کو خود اپنے آپ سے پوچھنا ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے وہ یہ کہ رمضان میں عمل اور آسان اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. کوئی ہمیں بودر کرنے کے لیے نہیں ہوتا، صرف ہمارا نفس ہوتا ہے جس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو کام کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے، مگر رمضان کے بعد شیاطین ہر طرف سے آ جاتے ہیں کہ اچھا، جو اس نے رمضان میں سیکھا تھا، جو اس نے کرنا شروع کیا تھا، وہ چھڑواؤ کسی طرح اس سے. تو وہ ہمیں گھیر لیتے ہیں اور پھر طرح طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں ڈالتے ہیں. کبھی سستی ہے، کبھی نیند ہے، کبھی کوئی کام یاد آ گیا، کبھی یہ سوچ ہے کہ اب تو رمضان اوور ہو گیا ہے، اب تھوڑی اسی طرح چلتا رہے گا. یہ تمام قسم کی سوچیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، اور بیسیکلی تو آپ کو سست بنا دیتا ہے. اتنی سستی ہے، اتنی تھکاوٹ ہے کہ اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو ہم نے ایسے نہیں چلنا، अगर ऐसे चलते रहे कि रमजान जैसे शुरू किया था हमने, आज भी वहीं पे खड़े हुए, तो वो जो 30 दिन या 29 दिन हमारी जिंदगी में आए थे, उन्होंने इसका मतलब हमें कुछ नहीं दिया, फिर हम खाली हाथ ही हैं। और अगर हम जिंदगी में सिर्फ रमजान का ही इंतजार करते रहे, तो सोचिए हमारी जिंदगी में शौरी रमजान कितने आए होंगे, या पता नहीं कितने आएंगे। कुछ 10-15 साल तो जिंदगी के वैसे ही गुजर जाते हैं बचपन में, फिर जवानी भी मिली तो इतना शऊर ही नहीं था, जैसे हम कहते हैं हमें तो अकल ही नहीं होती थी, पता ही नहीं था। रोजे छोड़ते गए, जो कजार रोजे रखने थे वो ही नहीं कभी रखे थे, तो बिल्कुल रमजान का उस तरह से शऊर ही नहीं था जैसे अब आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब अगर शऊर आ गया तो हम रमजान का तो इंतजार नहीं कर सकते कि अगला ही रमजान आएगा तो हम जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। क्या अल्लाह ताला की रहमतें सिर्फ रमजान में थी? क्या हमारी आखिरत के लिए जो कोशिश थी वो सिर्फ हमें रमजान में ही करनी काफी है? क्या रमजान के रमजान ही हम रब की बातें मानेंगे? क्या रमजान के रमजान ही वो हमारा रब है, बाकी जिंदगी में बाकी वक्त में वो रब नहीं है? क्या रमजान की रमजान ही हमें उसकी नाफरमानियों से बचना है? इसका जवाब आप खुद बता सकते हैं। क्या हमने अपनी नमाजों को, कुरान से ताल्लुक को, रोजों को सिर्फ रमजान में ही रखना है? हालांकि अल्लाह ताला तो इतने ज्यादा रहीम है, इतना रहमान है वो, कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में जैसे फरमाया है, आयत 261 में है, कि वो लोग जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इनके खर्च की मिसाल उस एक दाने की तरह है जो बोया जाए और इससे 7 बाले निकलें और हर बाल में 100 दाने हों। इसी तरह अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है कई गुना बढ़ाता है, और अल्लाह ताला तो वुसत वाला है, जानने वाला है। तो आप अल्लाह की वुसत को भूल गए कि वो रब चाहे तो आपको बगैर रमजान के भी 700 गुना दे सकता है। और एक और जगह आता है कि अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे बेहिसाब अजर दे, तो ये भूल गए थे हम क्या? अमल करने वाले तो बने, हम सिर्फ रमजानों का इंतजार कर करके और जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमें तो ये भी मालूम नहीं है अगला रमजान आएगा हमारी जिंदगी में या नहीं, तो क्या फिर वो हम दुआएं करनी भूल जाएं जो हम रमजान में रो रो के किया करते थे? क्या उन मगफिरत की दुआओं को, बख्शिश की दुआओं को, उस शुक्र को जो हम रमजान में करते थे, क्या हम भूल जाएं? तो इसके लिए हम क्या ऐसा करें कि हमारी सारी जिंदगी रमजान की तरह हो जाए? चाहते हैं ना हम सब, दिल तो हम सबका चाहता है कि अल्लाह जैसे हमारा वो दिन थे ऐसे पाकीज़ा एक एहसास होता था, ऐसे लग रहा था कि वाकई हर दिन के दिन हम जो गुनाह तो उस वक्त भी हो रहे थे, अल्लाह की नाफरमानियां उस वक्त भी हो रही थी, हमसे कुछ ना कुछ गलती हो रही थी उस वक्त भी, मगर ऐसे लगता था हर रोज की हर रोज अल्लाह ताला धो डालता है। अब वैसा एहसास क्यों नहीं? अब क्यों हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए? तो इसके लिए हम सबको एक दूसरे को थाम के आगे चलना है। हमें 1 महीने का कुछ एजेंडा बनाना है अपना, और हमारे पास 30 दिन होंगे कि हम उस गोल को अचीव कर सकें। और अगले रमजान से पहले हमें ऐसा महसूस ना हो कि सब कुछ छूट गया, सब खत्म हो गया, नहीं बल्कि हम ताजा दम हो, हम यूज्ड टू हो चुके हों, हम रोजे भी रखने वाले हों, हमारा कुरान से भी ताल्लुक ऐसा ना हो कि अगला रमजान शुरू हो तो ऐसे लगे नया ताल्लुक शुरू हुआ, नहीं हम तो पूरा साल ये ताल्लुक रखे हुए थे। हमारी नमाजें ऐसी ना हो कि पहली दफा पढ़ी है, कोई नई चीज है। हमारी गैर रमजान में भी नमाजें ऐसी खूबसूरत हों जैसी रमजान में थी, हमारे कयाम ऐसे ही लंबे हों जैसे रमजान में थे। ठीक है अगर उतना ज्यादा उस एक्सटेंड तक नहीं कर सकते, मगर उसमें से कुछ 70% तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमने बहुत सारी, वैसे तो फील्ड्स बहुत सारे हैं जिन पे हमने अपनी तवज्जो करनी है, मगर एक बात याद रखें, एक और जहन में इस चीज को रख के हमने चलना है कि हमने इंशाल्लाह ताला अपने बाकी दिनों को भी जो रमजान के अलावा है इनमें भी ऐसा ही अमल करने की कोशिश करनी जैसे रमजान में करते थे, ताकि हो सकता है कि अगर मौत आ जाए इस दौरान तो कम से कम हमारे अमल जो हैं ऐसे खूबसूरत हो जैसे रमजान में हुआ करते थे। क्योंकि याद रखें, हमारे रब ने तो हमारे से हमारी पूरी जिंदगी का सौदा कर लिया। सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह तौबा की आयत नंबर 111 है, बहुत खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मोमिनों से इनके नफ्स और इनके माल जन्नत के बदले खरीद लिए। अल्लाह ताला ने हमारी जानों को और हमारे मालों को खरीद लिया। अगर हम मोमिन हैं ना तो हम तो सौदा कर चुके हैं, लेकिन जब कोई सौदा होता है तो उसमें एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है। जो खरीदने वाला है वो कीमत लगाता है और बेचने वाला रजामंदी शो करता है कि मैंने ये चीज बेचनी है या नहीं। अब ये सौदा क्या है? हमारी जान है और हमारा माल है। अल्लाह ताला ने इसकी कीमत क्या लगाई है? जन्नत। और इस जन्नत के बदले में अल्लाह ताला आपसे खरीदना चाहते हैं आपकी ये जान और आपका माल। क्या बेचना चाहेंगे? देखें, एक लम्हा होता है जिसमें इंसान फैसला करता है कि मैंने बेचना है या नहीं, है ना? अगर इंसान को ये उम्मीद है कि इससे बेहतर कोई और कीमत लगा सकता है, इससे मुझे अच्छी कीमत मिल सकती है, तब तो वो अपना सौदा संभाल के रखता है। पर क्या जन्नत से भी बढ़ के कोई हमारी जान की कीमत लगा सकता है? हमारे माल की कीमत लगा सकता है? वो जन्नत जो कभी फना नहीं होने वाली, क्या उसको छोड़ के हम इस जान को और अपने माल को बेच दें इस दुनिया के लिए जो खत्म होने वाली है, हकीर है? और अगर हमने इसको नहीं बेचा, बिलफर्ज आपने सोच लिया कि हमने अपनी जिंदगी को नहीं बेचना, तो क्या होगा? आपका सौदा एक दिन गल सड़ के खत्म हो जाएगा। फिर आप बेचना चाहेंगे भी तो नहीं बिकेगा, कोई इसकी कीमत लगाने वाला नहीं होगा, एक दिन ये मिट्टी के नीचे चला जाएगा, ये माल आपके हाथ से निकल जाएगा। जान से रूह निकल गई, इस जिस्म में रूह ही नहीं है, इस सौदे को कौन लेगा? तो जब तक आपके पास ये सौदा है इसको बेच दें, अल्लाह ताला को दे दें, और इसके बदले में कीमत में जन्नत ले लें। अगर ये कैसे होगा, ये बिकना कैसे होगा? अगर आप खुद को बेचना चाहते हैं तो अतात अल्लाह ताला की सिर्फ रमजान में नहीं होगी, सारी जिंदगी में होगी। और फिर ये नहीं कहना मेरी भी तो मर्जियां चलेंगी, नहीं, जब सौदा बेच ही दिया तो आपकी मर्जी क्या? जो चीज आपकी है ही नहीं, फिर इस पे अपनी मर्जी कैसे चला सकते हैं? तो अगर वाकई बेचना चाहते हैं तो पूरी की पूरी जिंदगी अल्लाह की अतात में आ जाए इंशाल्लाह। हम असल में अपनी कीमत बहुत थोड़ी लगा लेते हैं, हम इसको दुनिया के हकीर से फायदे के लिए बेच देते हैं। सारी हमारी जिंदगी दुनिया के लिए बिकी हुई है, अल्लाह के लिए खुद को बेच के देखें। और हम सब तिजारत कर रहे हैं, कोई ना कोई अपने सौदे को कहीं ना कहीं जरूर बेच रहा है। हाँ, कोई किसी ने अल्लाह को बेचा हुआ और किसी ने दुनिया को। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ बेचना चाहते हैं, कौन सी कीमत आपके लिए ज्यादा काबिले कबूल है। इंशाल्लाह ताला इस महीने में जो आगे आ रहा है, जिन चीजों पे हमने स्पेशली तवज्जो करनी है वो मैं आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले ये कि हमने जैसे रमज़ान में तहज्जुद की नमाज का एहतमाम किया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई मुश्किल नहीं है, अभी भी कर सकते हैं। बस फजर से थोड़ी देर पहले उठ जाए, जितने भी आप नफल पढ़ना चाहें, 2, 4, 6, 8 जितने भी आप पढ़ लें, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप 2 पढ़ना चाहती हैं, जाहिर आपको कम टाइम लगेगा, ज्यादा पढ़ना चाहेंगी, क़याम अगर लंबा होगा ज़्यादा वक्त लगेगा। आप देख लें जितना आप वक्त निकाल सकती हैं, जितना आप कर सकती हैं, आप उस मुताबिक अपना अलार्म लगाएं फजर से पहले। फिर उसके बाद आप अपनी दुआएं पढ़ें सुबह शाम की, और बाय द टाइम फजर हो जाएगी, फजर पढ़ के फिर उसके बाद आपने जो भी करना है, चाहे आपने रुकना है इशराक के लिए तो रुक सकती हैं, अगर आपको और काम करने हैं तो वो काम करके फिर आके इशराक पढ़ सकती हैं। जो भी मैंने बातें बताई थी आपको रमज़ान के हवाले से, जो आपको पूरी टिप्स दी जाती थी, ये याद रखें वो सिर्फ उनका अजर रमज़ान में नहीं था, बाकी दिनों में भी है, बस सिर्फ ये है कि रमज़ान में कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन आप गैर रमज़ान में भी इंशाल्लाह कर सकते हैं ऐसा ही, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है। ये भी हो सकता है रमज़ान में इतना टूटा फूटा किया हो कि उसका भी उतना अजर ना मिला हो जितना बाद में आप करने से, और अच्छे तरीके से उसको करने से, नियतों को दुरुस्त करने से इंशाल्लाह पा सकते हैं। तो एक तो हम अपनी तहज्जुद को वापस लेकर आएंगे, दूसरे ये कि कुरान पाक के साथ हमने ताल्लुक जोड़ा था, तो हमने इस महीने में कोशिश ये करनी है कि कुरान पाक की तिलावत को सीखने के लिए हम कहीं ना कहीं कोई इंतज़ाम ज़रूर करें कि कुरान पाक सही पढ़ना हमें आ जाए, हमारी तजवीद सही हो, हमारा तलफ़ुज़ सही हो। इसके लिए हमने वाकई ही कोशिश करनी है, कहीं ना कहीं ज़रूर जुड़ना है। फिर हमने कुछ और भी काम किए थे अपने अखलाक को दुरुस्त करने के लिए रमज़ान मुबारक में, इंशाल्लाह ताला हम उनको भी दोबारा से देखेंगे। मगर जो इस महीने के लिए है सबसे पहली चीज़, वो है नियत। हमने इस महीने में अपनी नियतों को दुरुस्त करना है। काम वही होंगे हमारे जो रूटीन के काम हैं, मगर कैसे हम नियतें दुरुस्त करके ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं। तो करना क्या है, हर काम में जो भी आप करने लगे ज़रा सा रुक के पहले उसकी नियत कर लेनी है। ये कैसे होगा, मसलन है आप बच्चों को खाना खिला रही हैं, आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनके स्विमिंग पे लेके गई, ग्रोसरी की, घर की सफाई की, मेहमान आए उनकी खातिर तवाज़ो की, घर वालों के लिए खाना बनाया, यही होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम जो दुनियावी हमारे काम होते हैं, इन सब में नियत अल्लाह की खातिर कर लेनी है। अगर घर को साफ किया तो वो भी इस वजह से कि हाँ सफाई भी ईमान का हिस्सा है, अगर घर वालों के लिए बच्चों के लिए कोई काम किया तो हाँ इनकी जिम्मेदारी मेरे रब ने मेरे ऊपर डाली है, इस जिम्मेदारी को मैंने निभाना है, मैं उसको निभा रही हूँ, ये अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है मेरे पास, लिहाजा मैं जो इनका काम कर रही हूँ वो भी अल्लाह ताला की अमानत को पूरा कर रही हूँ, जो जिम्मेदारी उसने दी है उसे अच्छे तरीके से निभा रही हूँ। अगर आप खाना बना रही हैं घर वालों के लिए तो हाँ वो भी अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी डाली है शौहर की इताअत की, उनकी कंफर्ट की, उसको पूरा कर रही हूँ। तो हर काम में ये आप कर सकते हैं, आप नहा धो रहे हैं उसके अंदर भी नियत क्या कर ले कि तहारत का एहतमाम करना, अल्लाह ताला ने जो तहारत इख्तियार करते हैं लोग उनको पसंद किया है तो मैं पाक साफ हो रही हूँ। तो हर काम में ये आप कर सकते हैं, यकीन करें आप इन सारे कामों में करेंगे ना तो सारे काम आपके लिए इबादत बन जाएंगे। आपको कोई दावत पे बुलाता है तो मुसलमान की मुसलमान पे जो हकूक है उनमें एक ये भी है कि कोई अगर दावत करे, कोई अगर बुलाए तो उसकी दावत को कबूल किया जाए। तो मैं वो पूरा कर रही हूँ। आप देखिए, आपकी सारी जिंदगी इबादत बन जाएगी, लेकिन सिर्फ रुक के नियतों को दुरुस्त करना। अब ये आपने अगर कर लिया काम, तो आधा तो काम आपका हो गया, क्योंकि नियत दुरुस्त हो गई तो समझ लें आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। क्योंकि इसी की रियाकारी, इसी में जो फतूर जब आता है नियतों में, तो सारा अमल ही जाया हो जाता है। तो हमने आज से जो भी काम हम करेंगे सारा दिन में, बस थोड़ी देर के लिए, जैसे आप बाकी चीजों की प्लानिंग करते हैं, प्रोग्राम पूरा बनाते हैं, इसी तरह नियत कर लेनी है, प्री प्लानिंग हर अमल से पहले, इंशाल्लाह। आपके लिए एक नई दुआ है जो इंशाल्लाह आप याद भी करेंगे इस महीने में साथ साथ। पहले तो हम सिर्फ दुआएं लिख लेते थे ना, याद नहीं करते थे, तो इंशाल्लाह अब हमने दुआएं याद भी करनी है साथ साथ। पूरे महीने के लिए आपके पास एक ही तो दुआ होगी, तो उसको आप लिख भी लें अभी। हसन अहमद की दुआ है ये, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है। अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना, आकबत होती है ना, आकिबतना फिल उमूरी कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़ये दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। क्या मतलब है इसका? अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना, ए अल्लाह अंजाम अच्छा कर दे, मेरे अंजाम, हमारा जो अंजाम है वो अच्छा कर दे। किस में? फिल उमूरी, जैसे अमर होता है उसकी जमा उमूर, फिल उमूरी कुल्लीहा, सारे कामों में मेरा अंजाम अच्छा कर दे। जैसे अब ये हम ने सोचा है कि हम नियतें दुरुस्त करेंगे ना, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी दुआ है कि अल्लाह ताला जो मैंने नियत की है, फिर अमल करूंगी तो सारे ही मेरे कामों का अंजाम अच्छा हो जाए, इनका एंड अच्छा हो जाए। क्योंकि कोई अमल आप करते हैं तो नियत सही नहीं होती, कोई अमल आप करते हैं तो तरीका सही नहीं है, कोई अमल आप करते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं, मसलन नमाज ही पढ़ी तो ऐसी पढ़ ली कि जो है खुदा ना खास्ता मुंह पे मार दी गई, तो अल्लाह मेरे सारे ही कामों का अंजाम अच्छा करना। वह अजीर्ण, और जैसे अल्लाहुम्मा अजीर्ना मिन नार लिखते हैं आप, वह अजीर्ण और बचा ले मिन खिज़ये दुनिया, दुनिया की रुसवाई से, वह अजाब इल आखिरा और आखरत के अजाब से, मेरे गुनाहों की वजह से कहीं दुनिया में मुझे रुसवाइयां जिल्लतें उठानी ना पड़े और कहीं आखरत का अजाब ना हो जाए मेरे लिए। तो ये एक दुआ है जो इंशाल्लाह ताला आप याद करेंगे। और जिक्र जो हमारा इस माह का है, वही है जिससे हमारी निजात होनी है, वही है जो आमाल में तुलने में सबसे वजनी होगा। इसको हम पूरा महीना अपनी जुबान पे जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे तो इतनी खुशी भी हो रही है और बहुत जोश भी है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे जोश को और बढ़ाए इसमें, कि हम इंशाल्लाह ताला आज से पूरा महीना अपनी जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह रखेंगे। या अल्लाह, कि जब मौत भी आने लगे तो ऐसी हमें आदत पड़ गई हो ला इलाहा इल्लल्लाह की, कि मुंह से हाय हुई ना निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह निकले, तो हम तो इंशाल्लाह ऐसे अपनी आदत बना लेंगे। तो ये आपके लिए जिक्र है। और इस महीने में आपको पहले हुआ करता था कि हम एक रुबा पढ़ते थे, या एक निस्फ पढ़ते थे, या एक पारा पढ़ते थे रमजान में, मगर अब पूरा महीना है आपके पास कि इंशाअल्लाह ताला हमने दो पारे मुकम्मल करने हैं। ठीक है, दो पारे इंशाअल्लाह मुकम्मल कर सकते, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना, महीना है ना पूरा हमारे पास। जहां हमने रमजान में एक पूरा कुरान, बल्कि कई लोगों ने तो इससे भी ज्यादा मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक महीने में दो नहीं मुकम्मल कर सकते पारे? दो कुरान की नहीं बात हो रही, दो पारे सिर्फ। उसके लिए हम एवरी डे इंशाल्लाह अगर पढ़ें, नियत कर लें कि हम हर रोज पढ़ेंगे, तो मुश्किल नहीं है ये काम। ठीक है, और इसमें आप सबका साथ ही चाहिए होगा, फिर जब हम साथ मिलके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे वही काम आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सदर सहव के बारे में किसी ने कहा था कि बता दिया जाए, तो इंशाल्लाह मैं मुख्तसरन वो बता देती हूँ, और उसके बाद आपका सेशन आज का ओवर होगा। नेक्स्ट मंथ यानी नवंबर में आप का 15th को ही इंशाल्लाह ये दोबारा तरबियती सेशन होगा। आप 15 तारीख तो अपने कैलेंडर में मार्क कर लें हर महीने की, और मैंने देखा है कि वो सैटरडे है, तो इंशाल्लाह हम लोग उस सैटरडे को सुबह 6 बजे, 5:24 पे तकरीबन फजर हो रही है, तो 6 बजे हम लोग दोबारा मुलाकात करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी, सजदे सहव के बारे में एक तो ये बता देती हूँ कि कुछ लोग इसको सजदा सहू कहते हैं, सहू नहीं है, सहव है, ठीक है, आसानी है ना, आसानी के लिए। तो इसका तरीका क्या है कि अगर आपको मसलन कोई रकात में शक हो गया, जैसे एक हदीस में आता है कि अगर तुम में से किसी को रकात की तादाद में शक पड़ जाए कि 3 पढ़ी हैं या 4, तो शक को छोड़ दे और यकीन पर इतमाद करे, फिर सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करे। अगर उसने 5 रकात नमाज पढ़ी थी तो ये सजदे उसकी नमाज को जुफ्त बना देंगे, ठीक है, इसको इवन कर देंगे। और अगर इसने पूरी 4 रकात नमाज पढ़ी है तो ये सजदे शैतान के लिए जिल्लत का सबब होंगे। अगर आपको ये शक पड़ गया है कि मैंने कम पढ़ी है, तो 1 रकात और पढ़ लें। अगर आपको शक है, अगर आपको यकीन है कि मैंने, लगता है ज्यादा ही पढ़ ली है, कम नहीं पढ़ी या शायद इक्वली पढ़ी है, तो फिर आप सजदा सहव कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आपने तशहुद, जैसे पहला 2 रकत के बाद हम तशहुद के लिए बैठते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, उसके बाद खड़े होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने 3 पढ़नी है या 4 पढ़नी है, आपने खड़े होना था, आपको अत्तहियात के लिए बैठना याद ही नहीं रहा, आप सीधे ही खड़े हो गए, तो तब भी आप सजदा सहव कर लें, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप रुकू सजदा ही करना भूल गए, ना रुकू किया ना सजदा किया ना, या सूरह फातिहा ही नहीं पढ़ी, तो सूरह फातिहा के बगैर तो नमाज नहीं होती, फिर आप ये करें कि एक और रकात पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अगर आप ऐसा हो गया कि आप नमाज से फारिग हो गए और आप इधर उधर चले गए उठ के, और उसके बाद फिर आपको याद आया कि नहीं, मुझे लगता है कि आज मैंने नमाज में कुछ कम पढ़ा है, या मैंने आज नमाज में ये चीज भूल गई थी, तो आप फिर आके वापस भी सजदा सहव कर सकते हैं, ठीक है। यानी वापस बातें करने के बाद भी अगर आपको याद आ जाए तो फिर भी आप कर सकते हैं। यानी आप कैसे करेंगे, अगर नमाज में कर रहे हैं तो आप फिर अत्तहियात पढ़ के, दरूद शरीफ पढ़ के, जो भी आप दुआएं करते हैं वो करके, फिर उसके बाद आप अल्लाह अकबर कह के सजदे में चले जाएंगे, फिर उठ के बैठेंगे, फिर उसके बाद फिर दूसरा सजदा करेंगे, फिर उठ के बैठ के फिर सलाम फेर लेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे नेक्स्ट मंथ 15 नवंबर को आपसे मुलाकात होगी दोबारा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।